किसी का हुक्म है, सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समझ क्या है,
बताएं कि उनकी समझ क्या
है। किसी का हुक्म है, सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समझ क्या है। हवाओं को बताना ये भी होगा, चलेंगी जब तो क्या रफ्तार होगी, कि आंधी की इजाजत तब नहीं। हमारी रेत की सब ये फसीले, ये कागज के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत इनकी करना है जरूरी, और आंधी है पुरानी इनकी दुश्मन, ये सभी जानते हैं। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें, जरा ये सरकशी कम कर लें, अपनी हद में ठहरे। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें, जरा ये सरकशी कम कर ले, अपनी हद में ठहरे। उभरना और फिकरना और बिखर कर फिर उभरना, गलत है उनका ये हंगामा करना। ये सब है सिर्फ वहशत की अलामत, बगावत की अलामत। बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी, ये वहशत तो नहीं बर्दाश्त होगी। अगर लहरों को है दरिया में रहना, तो उनको होगा चुपचाप बहना।
क्या बात है साहब, अगर लहरों को होगा बहना तो होगा उनको अब चुपचाप रहना। जावेद अख्तर बहुत खूबसूरत लिखते हैं, बहते पानी की तरह इनका कलाम है, और मैं वही देख रही थी कि एक से एक अल्फाज। बहुत से लोग अपने कलम का सही इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने अब अगर आप जो बात कहना है, जो बात कहते डरते हो तो वो बात लिख। अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात देख लें, एंड दिस इज अमेरिका की बात कर लें, आप मिडिल ईस्ट की बात कर लें, आप सऊदी अरेबिया की बात कर लें, आप पाकिस्तान की बात कर लें, आप हिंदुस्तान की बात कर लें, इट्स एवरीवेयर, इट्स एवरीवेयर। हाँ, हमारी मोहब्बतें होती हैं, ये बिल्कुल वही है कि एक वाक्य आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वो एक खातून थी, हम तो उनके बेटे थे माशाल्लाह, चार पांच उनके बेटे थे। तो वो लड़के, उनके वालिद साहब ट्रक चलाया करते होते थे, पाकिस्तान की बात आपसे कर रही हूँ, दे यूज टू बी आर नेबर। तो वो लड़कों की खातून एक दफा अम्मी के साथ बैठी हुई थी कि फलां खातून जो है ना, उन्होंने मुझे चेक किया कि भाई तुम अपने बच्चों को मना करो कि मोटरसाइकिल लेके तो वो लड़कियों के पीछे आते हैं। तो खातून कहती, मैं उन्होंने किया, मेरे तो मुंडे ने, तुसी अपनी कुड़िया नु डक के रखो। दिस इज ऑल व्हाट इट इज। और जब हम गलत को गलत नहीं कह सकते, उसमें फिर एक और भी बात है कि मैं एज अ मदर, हमें लगता है जैसे मैं किसी और की बात ही नहीं करती, मैं आपको अपनी पिक्चर दिखाती हूँ कि अपना बच्चा बाज़ औक़ात नाराजगी होती है, खुफगी होती है, मगर लगता है कि नो ही इज राइट। फिर वो अल्लाह ने कहा ना कि मैंने तो 1% मोहब्बत माँ के दिल में रखी है, 99% मोहब्बत अल्लाह ने अपने पास रखी है। बहुत से लोग इसको 70% से भी तशबीह देते हैं, मगर अल्लाह ने अगर फीसद की बात करते हैं तो 1% माँ के दिल में मोहब्बत डाली, 99% मोहब्बत अल्लाह ताला ने अपने पास रखी। तो बच्चे कितनी से कितनी बड़ी गलती कर लें तो हम वो फिर एक दफा आके चूम के मिलते हैं तो हम जान फिदा करने के लिए उनपे तैयार हो जाते हैं। तो बहरहाल बहुत ही खूबसूरत है, और इनकी ये भी बड़ी प्यारी है, किसी का हुक्म है सारी हवाएं, किसी को बताएं कि रफ्तार क्या होगी। और एक से एक लफ्ज चुना हुआ, यानी कलम का सही इस्तेमाल, सही इस्तेमाल। वरना तो आजकल मैं इंटरनेट के ऊपर जाती हूँ, या आप भी अक्सर देखते होंगे, आप यकीन कीजिएगा कि गलत बयानी भी होती है, फेक न्यूज बहुत सारी है, बल्कि फेक न्यूज हमारे इलाके से चली आई। अब मैं अगर कनाडा की बात कर रही हूँ, कनाडा में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे ऐसे चीते हैं, नौकरी है कोई नहीं, घर बैठे हुए हैं और बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिंदाबाद। एक से एक वो चीजें तैयार की जा रही हैं जो कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मार्क कार्नी और जो हमारे पियर पॉलियम हैं, जो जाहिर मेन बड़ी पार्टीज हैं, उनके हवाले से लोगों ने उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वीडियोस बनाने के बाद जो कि कल मैं ये वाली भी रिसर्च देख रही थी, एंड आई थॉट आई डोंट नो विच डायरेक्शन वी आर हेडिंग टू। एनीवेज, आइए साहब आपको लेकर के चलूंगी कि मैं चंद एक स्पॉन्सर्स की तरफ लेके जाना चाहूंगी, उसके बाद हम फिर आगे की तरफ आते हैं। और इलेक्शन के हवाले से हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्लीज अपना वोट जरूर कास्ट कीजिएगा, वोट जरूर डालिएगा, जिन्होंने पहले वोट नहीं डाला तो प्लीज जिस दिन अब है वो वोट जरूर डालिएगा। चंद स्पॉन्सर्स विल कम बैक, प्लीज स्टे ट्यून्ड।
फेडरल इलेक्शन सोमवार 28 अप्रैल में हो रही है, तुसी जल्दी वोट कर सकते हो। एडवांस पोल 28 तो 21 अप्रैल तक खुले होंगे, जे तुसी पसंद करो तो तुसी मंगलवार 22 अप्रैल शाम 6 बजे तो पहला किसी भी इलेक्शन कैनेडा दफ्तर विखे वोट पा सकते हो, जा तुसी डाक द्वारा वोट पाउण लई अर्जी दे सकते हो। वोट पाउण दे अलग अलग तरीकिया बारे अपना वोटर जानकारी कार्ड देखो जा election.ca ते जाओ, ए साडी वोट है। वोटिंग बारे लोड़ींदी अधिकारिक जानकारी वास्ते election.ca ते जाओ जा 1-800-463-6868 ते कॉल करो।
ब्रैमली अते ड्यू साइड विखे घातक गोलीबारी, हंबरवेस अते एयरपोर्ट रोड दे नेड़े घर ते हमला, ब्रैमटन कार जैकिंग विच एक औरत नु कुट्टिया गया। ए सारे अपराध उन्हां हिंसक अपराधियां नाल जुड़े होए ने जो कार्निक ट्रूडो दियां नरम अपराध नीतियां द्वारा मुक्त होए ने, पर उम्मीद दी किरण है हिंसक अपराधियां नु जेल भेजन ते सुरक्षित कम्युनिटीज नु बहाल करन दे कॉमन सेंस कंजरवेटिव प्लान दा समर्थन करन लई हजारां ब्रैमटन वासी पीयर पॉलीएफ दी रैली विच शामिल होए। अपने परिवार दी सुरक्षा दी परवाह करदे हो, कंजरवेटिव नु वोट पाओ। एडवांस पोलिंग 18 तों 21 अप्रैल तक सवेरे 9 तों रात 9 बजे तक। कैनेडा दी कंजरवेटिव पार्टी द्वारा अधिकारित।
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुड़ सिखाओ ना।
कोई बात सादा सी है, हमारे पास दो गाड़ियाँ और एक घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773 6472903773।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हर साल वांग इस वरे भी ओंटेरियो सिख एंड गुरुद्वारा कौंसल वालों खालसे दा साजना दिवस डाउनटाउन टोरंटो विखे होवेगा, जो सवेरे 9 बजे CNE दे प्रोग्राम तो शुरू होके 1 बजे नगर कीर्तन सिटी हाल नु रवाना होवेगा। समुची साध संगत नु हुम हुमा के इस नगर कीर्तन विच शामिल होने दी निम्रता सहित बेनती कीती जांदी है।
ਇਸ ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰੇ ਗੋਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747471।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
फेडरल इलेक्शन सोमवार 28 अप्रैल नु हो रही है, यकीनी बनाओ कि तुसी वोट पाउण लई रजिस्टर्ड हो। जे तुसी रजिस्टर होए हो तां तुहानू डाक विच एक वोटर जानकारी कार्ड मिलना चाहिदा है। ए तुहानू दसदा है कि तुसी किथे अते कदों वोट पा सकदे हो। जे ए तुहानू 11 अप्रैल तक प्राप्त नहीं हुंदा है जां इससे दित्ती जानकारी गलत है तां election.ca ते जाओ, ए साडी वोट है। वोटिंग बारे लोड़ींदी अधिकारिक जानकारी वास्ते election.ca ते जाओ जां 1-800-463-6868 ते कॉल करो।
विलेज टेस्ट पूरे ओंटेरियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है। कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, बारबेक्यूज ट्राई करना चाहते हैं, कढ़ाई आइटम्स हैं एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में पे इंतहा वैरायटी है। बेहतरीन फीस्ट एंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पे। आफ्टर मिसिसागा दे आर इन ओकविल एज वेल। विलेज टेस्ट 9052323663। विलेज टेस्ट।
Spear and McKay Menswear, fully vertical operation, direct from factory to customer. Quality compare कर सकते हैं आप Harry Rosen, Burberry और Hugo Boss से। 100% Italian wool suits from $249.99, 100% Egyptian cotton shirts from $29.99, 100% Italian wool trousers from $49.99. We have moved to a new location in Heartland Town Center, 775 Britannia Road West, Unit 7B, Mississauga पे। हम Sundays को भी open हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कीजिए एट 905-670-3388 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट spearandmckay.com।
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ।
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 416-792-8792।
रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक।
बाय वन हियरिंग एड गेट वन 15% ऑफ। 416-792-8792। अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन 416-792-8792।
जी साहब एक दफे से खुश आमदे, मैं कुछ चीज ही आपके लिए निकाल रही थी ना, दैट व्हाट इट इज। एनीवेज आज 4:30 बजे मेरे साथ जनाब आशर अजीम साहब होंगे और हम कनाडा के इलेक्शन की बात करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं। मेरा ख्याल है कि अगर हम फैक्ट्स को देखते हैं तो क्या फैक्ट्स हैं, जाहिर है लिबरल इस वक्त वाज अक्सरियत में है। आप भी अभी, बल्कि मैं आपके साथ बिफोर इसके कि हम उस सेगमेंट की तरफ चलें, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं कि जनाब हमारे डग फोर्ड साहब जो हैं, आपको मैं अभी बटन्स की बात कर रही थी और उसको मैं शेयर करती हूं, उसी को मैं निकालना चाह रही थी। और ये जो वाकया हुआ है ये ओटावा में ये वाकया हुआ, और इस वाकया में एक कॉन्फ्रेंस थी जो लिबरल कारकुनों ने कंजर्वेटिव कॉन्फ्रेंस स्टॉप द स्टील के बटन रखे हुए थे। अच्छा मैं इसमें आई एम नॉट फैब्रिकेटिंग एनीथिंग, जो यहां के मेन स्ट्रीम की स्टोरी है मैं वही आपके साथ शेयर करने जा रही हूं कि ये ओटावा में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी और वो कैनेडा स्ट्रांग एंड फ्री नेटवर्किंग कॉन्फ्रेंस के तहत ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब इसमें कॉन्फ्रेंस में दो लिबरल के जो वॉरियर्स थे वो भी पहुंच गए। मैंने अगेन आपसे कहा कि हर पार्टी में लिबरल है, कॉन्जर्वेटिव है, एनडीपी है, क्यूबैक्वा है या ग्रीन है, हर पार्टी में डिपेंडिंग अपॉन देयर बजट वो लोग होते हैं जो दूसरी पार्टी की बात सुन रहे होते हैं और उसके मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे होते हैं। तो ये इसमें ये जो कॉन्फ्रेंस थी कैनेडा स्ट्रांग एंड फ्री नेटवर्किंग, इसके दो लिबरल पार्टी के अमले के अफराद ने शिरकत की। अब अगेन जाहिर है यहां के जो न्यूज को कलेक्ट करते हैं दे ट्रेवल, पब्स में जाके बैठते हैं, सड़कों के ऊपर टाइम गुजारते हैं, दे डेफिनेटली लिव, मतलब मेरे लिए तो बहुत आसान है बैठ के एक जगह अखबार पढ़ के आपके साथ खबरों को शेयर करना, बगैर जो एक्चुअल लोग होते हैं वो रोड के ऊपर रहते हुए अपनी अपना डेटा इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो हुआ ये कि कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर ना झगड़ा चल रहा है, ठीक है, एक झगड़ा चल रहा है जो कंजर्वेटिव पार्टी की एक शख्स है उनकी जगह पे दूसरे शख्स का, पहले का जो एक्चुअल बंदा है उसका नाम काट के दूसरे बंदे का नाम। तो बहरहाल ये दो तीन चीजें बटन रखे गए थे। ये जो कॉन्फ्रेंस थी जिसे मैंने कहा कनाडा स्ट्रांग एंड फ्री नेटवर्किंग की कॉन्फ्रेंस है, पहले मीटिंग कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी जाती थी, और एक प्लेटफॉर्म है जो कंजर्वेटिव्स जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में आके अपनी बात करते हैं, सुनते हैं। अच्छा यहां पर दो लिबरल के जो वॉरियर्स थे वो उसमें आ गए और कहते हैं कि जो इसमें पार्टिसिपेंट्स थे, कंजर्वेटिव्स के जो पार्टिसिपेंट्स मौजूद थे, उन्होंने महसूस किया कि यहां पे उनको दो तरह के, एक स्टॉप द स्टील जो कि 2020 में अमरीकी सदारती इंतखाबात के नतीजे को चैलेंज करने की कोशिशों का हवाला था, एक तो उसका बटन था। और अब हुआ ये कि एक बटन पर लिखा हुआ था जेनी बर्न, ये मैं अगर मेरा विश आई विश क्या मेरा अगर इनको दिखा सके, इट्स वेरी मतलब वायरल न्यूज थी कल की और परसों की। और ये कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा की डायरेक्टर हैं जो जेनी बर्न हैं, उनका नाम काट गया था और उसके नीचे कोरी का नाम लिखा गया हुआ था, और कंजर्वेटिव पार्टी के एक जो पुरानी स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनका नाम करते हैं। ओंटारियो के वजीर अला डग फोर्ड ने आज बल्कि इसके बारे में बयान भी दे दिया। जुमे की शब ओटावा के दो जो बार्स थे उसमें इंतखाबी मुहिम के कारकुनों ने इंकशाफ किया कि ये चार लिबरल पार्टी की मनसूबाबंदी का हिस्सा थी। अब सुनिए हुआ क्या, दो लिबरल स्टाफर्स ने कंजर्वेटिव के लिए कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। اب یہاں پہ ایک جرنلسٹ بھی موجود تھی، وہ کہتے ہیں لبرل اس گفتگو کو صحافی کی سماعت کے بالکل قریب ہوئی جس نے اس کو رپورٹ کیا، اور ایک گفتگو کو تو اس یہ جو جرنلسٹ رپورٹ کر رہی ہیں انہوں نے ذاتی طور پہ سنا، دوسری کو انہوں نے کنزرویٹو کے تھرو سنا ہے، اور لبرل پارٹی سے اس پہ تبصرہ کرنے کا کہا گیا، انہوں نے اس کو پہ تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا، اور کینیڈا اسٹرانگ اینڈ فری نیٹ ورک کے ترجمان انہوں نے کہا ہے کہ افسوسناک لیکن حیرت انگیز نہیں ہے، اور بہرحال اس کانفرنس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے. پیئر پولیف کی انتخابی مہم پر کام کرنے والے افراد کو ہدایت کی گئی تھی کہ کانفرنس میں شرکت نہ کریں بلکہ ووٹرز سے رابطے کے لیے اب وہ گھر گھر جا کے مہم چلائیں. یہ ہیں وہ بٹنز، ایک سٹاپ دا سٹیل، اور جینی بائرن کے نام کی بجائے کوری ٹینک کا نام یہاں پہ لکھا گیا. یہاں پہ میں ڈگ فورڈ صاحب کا پیغام آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی شیئر کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں. ڈگ فورڈ صاحب نے اس کے بعد انہوں نے یقیناً جو اچھا یہ جو ہیں یہ ڈگ فورڈ کی کمپین کی مینیجر رہی ہیں پچھلے تمام الیکشنز میں، اور آپ کو پتا ہے کہ ڈگ فورڈ نے واضح اکثریت بھی حاصل کی ہے. آج ڈگ فورڈ اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے اپنی مہم کے منتظم کے بیان پر پولیو انہوں نے پیئر پولیو پر تنقید کی ہے کہ وہ یہ جو پولز ہیں ان کو سیریس نہیں لے رہے. ہی مسٹ ٹیک دیز پولز ویری سیریس. 14 اپریل کو آنٹیریو کے وزیر اعلی ڈگ فورڈ نے کوئنس پارک میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آنٹیریو کے وزیر اعلی ڈگ فورڈ نے اپنے دیرینہ انتخابی مشیر یہ کوری ٹینیک جو ہے ان کا دفاع کیا ہے. اب میں نے کہا نا یہ جو بٹن بھی نکلا تھا، دیکھیے اوپر جینی بائرن کا نام اور نیچے کوری ٹینیک، ویری سنسیئر اسٹریٹجسٹ ہیں ود ڈگ فورڈ، اور انہوں نے جو کوری ٹینک ہیں انہوں نے ڈگ فورڈ نے ان کا دفاع کیا ہے، اور انہوں نے بلکہ پیئر پولیف کے اوپر تنقید کی ہے. سی ٹی وی کے پروگرام پاور پلے میں انہوں نے ٹینک نے پولیور ان کی ٹیم پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے پولز موجود ہیں، ان پولز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اسٹریٹجی بنائی جا سکتی ہے، مگر آپ کسی بھی جو پولز ہیں ان کو توجہ نہیں دے رہے. انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ بات لوگوں کے لیے سننا پریشان کن ہے، لیکن ہر سروے اور ہر پول جو اس میں زیادہ لبرل لیڈ کر رہی ہے اور اعداد و شمار بے شک اپنی جگہ پر ہیں، اور اگر ایک آپ انتخابی مہم چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سروے پر یقین نہیں رکھتے تو یہ یقیناً ایک غلط بات ہے. بہت سے لوگ فالز گیم بھی کھیلتے ہیں کہ اگر آپ کی جو ریلیز ہیں بہت سکسیزفل ہیں، مگر میں ایک اور اسٹریٹجی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. 2021 کے الیکشن کی طرف چلے جائیں، اس سے پیچھے کے الیکشن کی طرف چلے جائیں، جو مین ووٹرز تھے، آپ نے کچھ دن پہلے ایک آرٹیکل پڑھا بھی ہوگا کہ ویمن ہیو پرابلم اور پیئر پولیو ہیز اے پرابلم ود دا وومن، کیونکہ اگر آپ پیئر پولیو کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو خواتین، ینگ بچیاں بھی ان کے اگینسٹ ہیں، کیونکہ آج پھر میں نے پورا کا پورا جب آرٹیکل کو آگے دیکھا تو جو پتا چلا کہ مرد جو ینگ لڑکے ہیں دے آر موونگ، کیونکہ کنزرویٹو کا جب لفظ استعمال آتا ہے تو وہاں پہ ویلیوز کا استعمال آ جاتا ہے، ویلیوز کا اختیار آ جاتا ہے. تو میں اس کے بارے میں بات کروں گی، تفصیل سے بات کروں گی. 4:30 ہم نے الیکشن کو ہی کور کرنا ہے، میرے ساتھ جناب آشر عظیم صاحب ہوں گے. تو جو ہمارے ڈگ فورڈ صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹینک ہیں فورڈ کی تین مسلسل اکثریتی حکومتوں کی مہمات انہوں نے چلائی ہیں. انہوں نے پیئر پولیو پر تنقید کی ہے کہ اپنی انتخابی حکمت عملی کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر مرکوز کرنے میں ناکام رہے ہیں. مطلب That's what it is. پیئر کو کوئنز پارک میں جب فورڈ سے بیان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی سچائی تکلیف دیتی ہے. ویری رائٹ. آئی وش اینڈ آئی وانٹ ایوری بڈی ٹو ریڈ دس آرٹیکل. یہ جو جنریشن زی کے بارے میں، میرا آپ کا فیوچر الٹیمیٹلی جنریشن زی کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے. It's sad جو information ہے کہ what it is، مگر youth جو ہے نا، youth many young men are changing what conservative look like in Canada، ٹھیک ہے. पीपल, उसकी वजह ये है कि जिसमें क्राइम्स भी हैं, जिसमें थेफ्ट भी है। ये एक लड़का है जिसके बारे में कहा गया कि ये लड़का डाउनटाउन में ट्रेवल कर रहा चल रहा था, तो एक आदमी पीछे से आया और कस के चमाट मारी के चाकू मार दिया। उसके बाद इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो फिर इस लड़के ने कहा कि क्या कर लेगी पुलिस, पुलिस आएगी इसको अरेस्ट करके लेके जाएंगे, अगले दो घंटे के बाद इसको रिलीज कर देंगे बिकॉज ही इज हाई, उसने ड्रग की लिया, उसको पता भी नहीं कि उसने ये क्या हरकत की है। तो फिर अल्टीमेटली इसने डाउनटाउन का इलाका छोड़ा जो बाहर का इलाका था, और उसने महसूस किया कि मोस्ट ऑफ द सीनियर जो एजेड कम्युनिटी है वो उन इलाके, बिकॉज दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट देयर वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज की प्रोटेक्शन की बात अगर मैं करती हूँ ना, तो आप क्या उस कम्युनिटी को कहते हैं अगर आप दूर दराज के इलाकों में चले जाएं तो वो अब आज भी बगियां इस्तेमाल करते हैं। आई अंडरस्टैंड कि जो लोग बहुत तरक्की पसंद हैं वो ये कहते लो जी आज भी बगियों के बीच में ट्रेवल कर रहे होते हैं, आज भी बत्ती जला रहे होते हैं। तो बल्कि मेरा तो दिमाग बिल्कुल खिचड़ी बन गया। आज मैंने एक और आर्टिकल आपके साथ शेयर करना था, इट्स वेरी दो आर्टिकल्स बल्कि मैंने आपके साथ एक शेयर करने हैं। इट्स ऑल इन्फॉर्मेशन मेरी, मतलब मुझे तो कोई ना तो एंटरटेनमेंट का शौक है, ऑफकोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुझे अच्छी लगती है, मैं उसके टेक्नोलॉजी में मैं सिफर हूं, मगर मुझे साइंस की चीजें इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर। अब बताइए कि मैंने आपके साथ बड़ी दफा शेयर किया कि द होल यूनिवर्स इज सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, दीज आर द मैग्नेटिक फोर्सेज। इवन हम कभी कभी किसी से मुलाकात करते हैं ना तो हम कहते हैं कि मेरी वाइब्स ने मेरा साथ नहीं दिया, यानी मेरी वाइब्स बड़ी नेगेटिव नहीं थी। तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड है हमारे दरमियान जो इंटरेक्ट करती है, बात जगहों पे बिल्कुल रिपल्शन हो जाया करती होती है। ठीक है, इन दोनों चीजों को कवर करेंगी। मैंने आपके साथ ये भी कवर करना है हाउ मेनी यंग मैन आर चेंजिंग व्हाट कंजर्वेटिव लुक लाइक इन कनाडा। और इसमें जो पंच लाइन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो कहते हैं कि जितनी यंग लड़कियां हैं दे आर अगेंस्ट कंजर्वेटिव, वेयर द मेन जो बॉयज हैं दे आर विद मूविंग टूवर्ड्स कंजर्वेटिव, यानी कदामत पसंदी की तरफ लड़के चलते चले जा रहे हैं। और वो कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है मेरे पास जॉब भी हो, मेरे पास घर भी हो, खानदान हो, मुझे तहफ्फुज चाहिए। ठीक है, एक वीडियो में उन्होंने कहा कि कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम को खवातीन की गैर महफूज सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराया, कुछ लोगों ने इसे नस्ल परस्ताना करार दिया। आप कह सकते हैं इसको, बट नो, अब आलमी रोजान की अगर बात करें ना तो खवातीन जो तरक्की पसंद खवातीन हो गए, आई डोंट केयर, आई हैव माई ओन टाइम, आई हैव माई ओन स्पेस, दीज आर द कॉमन वर्ड्स, माई स्पेस वगैरह वगैरह। और यहां तक है कि भाई आपका हस्बैंड जो है वो जो है आपसे कोई बात नहीं मनवा सकता, कुरान बिल्कुल ही डिफरेंट कहता। तो मुझे लगता है कंफ्यूज सी नस्ल है ना। माइरीन कहते हैं कि अब ऑनलाइन डिफरेंट फैमिलीज बन गई हैं हमारे मुआशरे में, आदमी और खवातीन बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन 180 के एंगल के ऊपर चल रहे हैं इसमें, और मर्द एक तरफ जा रहे हैं, औरतें दूसरी तरफ जा रही हैं, जिसमें ये अबैकस की रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि 18 से 30 साल के वोटर्स की अक्सरियत ने या तो कैनेडियन इलेक्शन स्टडी पर वफाकी इंतखाब के बाद इससे पहले किए गए लिबरल पार्टी या एनडीपी की हिमायत, ये 2015 से पहले, मगर उसके बाद 2021 के बाद यंग जनरेशन का जो रुझान है वो चेंज है, द बॉयज एंड द मेन आर मोर कंजर्वेटिव एज कम्पेयर टू द वुमेन। ठीक है, इसमें वो कहते हैं कि अगर आप लड़कियों का जिक्र करते हैं 2021 के इंतखाब से पहले, जिसमें 27% मर्दों में 29% जो थे, और 18 पॉइंट्स का फर्क था मर्दों और औरतों में, 18 पॉइंट्स, औरतें मोर लेफ्टिस्ट होती जा रही हैं, आदमी लड़के यंग लड़के मोर एंड मोर राइटिस्ट होते जा रहे हैं। उसकी वजह मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है कि वो जो ये बहुत सारी तंजीमें हैं जैसे माय वे, एक मी वे है, और पता नहीं कौन कौन सी, आपको ज्यादा पता होगा, आप भी जानते हैं, तो मत समझिएगा कि मेरी कोई किसी के साथ फेवर्स है, आपके भी जवान बच्चे हैं, आप उनका भी फीडबैक जरूर लीजिएगा। विल टेक सम कमर्शियल एंड आई विल टेक यू टू वन स्पॉन्सर, प्लीज स्टे ट्यून्ड।
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कड़ाही, शिनवारी गोट कड़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा, यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स LEDs और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस, गारंटी और लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA। तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेली टाइम ब्रैम्पटन, 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9054551666। टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स।
चांदनी
बैंक्वेट हॉल,
इंटेलिजेंट चॉइस लोकेशंस, साउंड सिस्टम इनोवेशंस, चांदनी बैंक्वेट हॉल।
30 years ऑफ हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस, कॉर्पोरेट इवेंट, एग्जीबिशन, एक्सपो और एनी सेलिब्रेशन,
इंडोर एंड आउटडोर गोल्फ कोर्स फैसिलिटीज, चांदनी बैंक्वेट हॉल। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल टुडे एट 9054588888, 9054588888 और विजिट chandnivictoria.ca।
जी साहब, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। जिंदगी में इंसान सीखता है, ऑल आर लाइफ वी लर्न। मैं उस भाई का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ही टेक्स्टेड मी, बड़ा खूबसूरत टेक्स्ट सेंट मी रिकॉर्डेड मैसेज, थैंक यू वेरी मच, बड़ा इनकरेजिंग था। आई और मेरा ख्याल है कि आपकी उसी इनकरेजमेंट की बुनियाद के ऊपर चीजें चलती चली जा रही हैं। आज मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ मोमिन हलाल मीट पे। वी डोंट एडवर्टाइज एट द मोमेंट, मैं एडवर्टाइज नहीं कर रही, मगर मैं आपको इतना यकीन दिलाती हूँ कि आप मोमिन हलाल मीट पे जाएं, यू विल बी गिवन सच अ ग्रेट सर्विस, अनबिलीवेबल। वहां पे हमारे वसीम भाई होते हैं, वहां पे जनाब पहलवान साहब होते हैं, सियालकोट के पहलवान। वो जो एक बड़ा सारा नहीं होता डम्बल जो होता, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, वो जो इतना बड़ा सारा भोंपू सा होता है गोल्ड का बना हुआ, उन्होंने वो विन किया हुआ सियालकोट से। बस जी, उम्र के साथ तो पहलवानियां वैसे ही रह जाती हैं। वो एक आदमी पहना भी, मेरा एक कॉलर, एक मेरा स्पॉन्सर भी मेरे साथ है। तो जनाब जब शादी हुई ना, तो कौन से थे, एक हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे थे निजामदीन, तो वो कहते जी व्याह होया मुंडे दा आया तो इधरों फरले निकलन। जी व्याह हो गया, शादी के एक साल दो साल चार साल के बाद उसी आदमी को देखा तो बंदा बिल्कुल बदल गया था। एक बच्चा एक कंधे के ऊपर, दूसरा बच्चा दूसरे कंधे के ऊपर, तीसरे हाथ के बीच में टोकरी थी, चौथे के बीच में एक लिफाफा था और बेचारा पीछे पीछे चलता चला आ रहा था। तो बस वक्त ऐसे ही बदल देता है इंसान को, चाहे वो खवातीन हो चाहे वो आदमी हो। भाई साहब, एक चीज आपने कभी नोट की है, जब जवान होते हैं ना तो आदमी आगे आगे चलता है औरत, जितने ओल्ड एज के लोगों को आप देखेंगे ना, औरत आगे चलती है आदमी पीछे चलता है। सो अच्छा, आप इसको ट्राई करके देख लीजिएगा। मेरे साथ भी एक हीरो है इस वक्त, आई थैंक हिम वेरी मच, राजा बादशाह। ऑल स्टेट के साथ आपका ताल्लुक है एंड ही इज इन अ लीडिंग पोजीशन, एज एक्सपेक्टिंग का जो ऑफिस है उसको लीड कर रहे हैं, ही इज द इंचार्ज ऑफ दैट ऑफिस। ऑल स्टेट आपकी गाड़ी और घर, घर और गाड़ी और कॉन्डोमिनियम की इंश्योरेंस करते हैं, और आप राजा बादशाह से एक बार बात जरूर कीजिएगा। एक बार नंबर मैं दिए देती हूँ, और उनका नंबर है 6472903773। वो कहते हैं जिसे तो जोर चलता है ना, बंदा उदे जोर चलाता है ना, बाहर देते जोर नहीं चलाएगा। वो मैं लतीफा याद आ गया, वो एक बंदा सी ना, उन्हें क्या लड़ाई होगी दोनों की, दोनों का मार के देख तू जरा, तुझे कहता मारांगा तो तू की कर लेगा, कहता की करांगा मैं, दूजा मुंह भी तेरे पास, दूजा पासा भी तेरे अगे कर देंगे, इधर भी मार ले।
हाँ
जी, क्या याद आ गया आपको?
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
लतीफे से आपको सलाम याद आया?
लतीफे से याद आया, अगर जान की ईमान पाऊं तो एक लतीफा सुनाओ
सुनाओ अच्छा आज के बाद से ये कंडीशन है, वेन एवर यू कम ऑन देयर यू हैव टू ब्रिंग अ वेरी अच्छा, उस लतीफे में अगर हमें हंसी आ गई तो फिर तो आपके लिए नाम होगा, और अगर नहीं आएगा तो फिर आपको जुर्माना होगा।
चलो मेरी भी एक शर्त है फिर।
नहीं नहीं मैं नहीं शर्तों के साथ खेल,
नहीं छोटी सी शर्त है।
नहीं मैं नहीं खेल,
नहीं प्लीज नहीं नहीं खेलो प्लीज। अच्छा सुन छोटी सी शर्त ये कि अगर आपने मुंह में उंगली रख के पूरा लतीफा सुनना है।
अच्छा मेरे बोलने से क्यों किसी को इतराज है, मेरे हस्बैंड
नहीं, नहीं, तो नहीं बोलने में इतराज नहीं है, दिस इज हाउ यू फील द लतीफा।
अच्छा मुजफ्फर अली को ना मैं, अब आप इसको भी लतीफा समझे, मुजफ्फर अली को बड़ा था, कहते आरफा बेचारे खुद मुझसे पहले चले गए, कहते थे तू मर भी गई ना तो किसी को यकीन नहीं आना ये मरी बड़ी।
अल्लाह ना करे आपको जिंदगी दे सेहत दे।
अच्छा जी
मैंने ये लतीफा पहले सुनाया था, क्विकली सुना देता हूँ। एक बंदा होता है उसको अलादीन का जिन मिलता है, वो उसको कहता है क्या हुक्म है मेरे आका, तो वो उसको कहता है यार इस तरह कर के तू ना ये अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक एक सीधी रोड बना दे, उसमें कोई हर्डल ना हो, बस सीधा आए जाए अमेरिका से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अमेरिका। और जिन कहता है नहीं जी नहीं बड़ा मुश्किल काम है, और काम दसो यार ये बहुत बड़ा काम है। कहता अच्छा फिर इस तरह करो कि तुम कुछ ऐसा कर दो कि मेरी बीवी मेरी हर बात माने। जिन कहता यार ये तो बहुत ही मुश्किल काम है यार, मुझे ये बता के रोड वन में बनानी है कि टू में बनानी है।
अच्छा यहाँ पे मैं एक सवाल करती हूँ बाप से।
जी जी जी।
जब आप 24 साल के थे ना, अब सची सी बोलना सच कहना, जब आप 23-24-25 साल के थे ना पढ़ रहे,
यानी कि आजकल
माँ कहती थी पुत्र ध्यान नाल पढ़, तू डॉक्टर बन इंजीनियर पढ़, आप कहते थे माँ मेरा ब्याह कर, माँ मेरा ब्याह कर, मैं जी अच्छा। नहीं सकता मैं ब्याह कर, आपको हो गया था इश्क।
अच्छा
अच्छा आदमियों की प्रॉब्लम ये जब इश्क सर पे चढ़ता है, चढ़ के बोलता है ना, उस वक्त तो उनको होता बस उन ये साल दो साल चार साल के बाद पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान हाईवे याद आ जाती है आपको।
नहीं ये तो देखे ना, अब एक बंदे को अलादीन का जिन मिला, चिराग मिला, तो उसने बोला यार मेरी ख्वाहिश है,
आई लव यू।
जिन ही दो नंबर निकला, उसने बोला यार
जिन दो नंबर ठीक है जी।
ओके
अच्छा जी अब आप हमें बताइए ऑल स्टेट के बारे में।
जी बहुत शुक्रिया। अच्छा ऑल स्टेट के साथ मुंसलिक हूँ, गुज़िश्ता 10 साल से मेरा इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस
मतलब
है।
10 साल से आप ऑल स्टेट के साथ हैं, मगर आप अभी भी
23 साल
के हैं।
जी जी मैं वही अर्ज करने लगा था, 10 साल से 24 साल के हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस है जी पर्सनल ऑटो पर्सनल होम इंश्योरेंस के अंदर, मजाक की बातें अलग, लेकिन अगर आपको सेविंग करनी है, $1775 की सेविंग है, अगर आपके पास दो गाड़ियां हैं एक होम एंड एक कंबाइन करते हैं, ये तो वो अप फ्रंट सेविंग है जो कि आप एवरीबडी कैन गेट इट। अगर नहीं भी है आपके पास दो गाड़ियां और होम, तो आप फिर भी आप मुझसे कोट लीजिए, देयर इज नो ऑब्लिगेशन। आपका जो बजट है, आपकी जो नीड है, उसके मुताबिक एक कस्टमाइज कोट आपको बना के दी जाएगी, और अगर आपको पसंद आती है उसे कंटिन्यू करिए। कवरेजेस को डिस्कस करिए, डिस्काउंट्स को डिस्कस करिए, देयर आर मेनी थिंग्स। स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट है, रिटायरीज का डिस्काउंट है, गाड़ी गैराज में पार्क होना वर्सेज ड्राइववे में पार्क होना, ये डिस्काउंट है, डिस्कस करिए, कॉल करिए, इसके लिए जरूरी है। जनरली इंश्योरेंस की गाड़ियों का और होम का रिन्यूअल का जो रिलीज है, ये 45-50 डेज इन एडवांस हो जाता है इफ यू हैव इट ऑलरेडी, एंड अगर आप शॉप अराउंड कर रहे हैं, और अगर नहीं भी है फिर भी अगर आप शॉप अराउंड कर रहे हैं तो मुझे कॉल करिए, 6472903773 मेरा नंबर है, रब्ता करिए, वॉइस मैसेज छोड़िए, टेक्स्ट मैसेज करिए, आई विल गेट बैक टू यू इंशाल्लाह। 6472903773
राजा बादशाह, इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक, और आज के 3:30 बजे के सेगमेंट में मैं आपसे यही शेयर कर रही थी, नेवर हाइड। इंश्योरेंस कंपनियां इतने दे डेफिनेटली, अगर आपने कहीं पे भी इंफॉर्मेशन गलत प्रोवाइड किया है तो उसकी बहुत आपको सजा हो सकती है। आई मीन ये वेयर यू लिव ऑलवेज गेट इंश्योरेंस, अपना एक्चुअल एड्रेस देने की कोशिश करें, मगर अगर आप गाड़ी और घर के लिहाज से। अच्छा, अब एक सवाल आया, सवाल ये कि बहुत से लोग के पास घर नहीं है, दे लिव इन अ रेंटल प्लेस, इसका मतलब उनके पास एक या दो गाड़ी है बट दे लिव इन अ रेंटल प्लेस, हाउ कैन दे एंड अप सेविंग?
जी, सेम डिस्काउंट अप्लाई करता है। अच्छी बात यह है कि अगर आप होम ओनर हैं, आप टेनेंट हैं, या आप कंडोमिनियम में रह रहे हैं, इन एनी सिचुएशन इफ यू टेनेंट पॉलिसी लेंगे एज ए रेंटर्स, आप होम इंश्योरेंस के लेंगे या कांडो के लेंगे, आपको वो सेम डिस्काउंट मिलेगा, सो यू कैन कम्बाइन देम स्टिल। और अगर आपके पास दो गाड़ियां नहीं है, इफ यू लूज द मल्टी व्हीकल डिस्काउंट, यू कैन स्टिल गेट द कार प्लस होम डिस्काउंट, वो भी एक अच्छा प्रोमिनेंट अच्छा डिस्काउंट है जबरदस्त किस्म का, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। लाइक अगेन, देखें कोशिश की जाती है, मैं भी कोशिश करता हूँ आपके लिए, आप भी रब्ता करते हैं उम्मीद के साथ कि कुछ न कुछ कहीं ना कहीं एक अच्छी प्रोडक्ट अच्छी प्राइस में मिलेगी। कोशिश अपने तरफ से पूरी करूंगा, इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएगी, लेकिन इफ ना भी पसंद आए तो एक ताल्लुक बन जाता है, इंसान दोबारा से कोर्ट ले लेता है। वी कैन सेव द नंबर्स यू नो एंड वी कैन टॉक इन फ्यूचर एज वेल, जब द कोर्ट एक्सपायर हो जाती है तो रिकोर्ट किया जा सकता है।
एक और चीज है कि बाज़ोकात लतीफा लगी थी सुनाने पर, बैंड आई कैंट, तो यू विल नॉट बी बॉदर्ड, कोई आपको कॉल करके तंग नहीं करेगा, आप कोटेशन लेने की बात करें, इन्फॉर्मेशन लेने की बात करें, एंड इफ इट सूट्स यू वेल एंड गुड, इफ नॉट एंड ऑफ कोर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पॉलिसी। अपना नंबर दीजिए प्लीज।
जी जी बिल्कुल, जरूर लीजिए, मेरा नंबर 6472903773 मेरा नंबर है जी,
290-3773 6472903773। आपका ऑफिस कहाँ पे है और किस एरिया से लोग आपको कॉल कर सकते हैं?
ओंटारियो के अंदर आप कहीं भी हैं, यू कैन कॉल मी, कॉन्टेक्ट मी, आपको किसी भी लोकेशन, मतलब जीटीए में है, आउटसाइड ऑफ जीटीए हैं, एज लॉन्ग एज यू आर इन ओंटारियो, आप मुझसे रब्ता करके कोर्ट ले सकते हैं। पिकरिंग इज माई मेन लोकेशन, पिकरिंग के अंदर ऑफिस में बैठता हूँ, इफ यू वांट टू मीट मी एंड सेट अप अ मीटिंग यू आर मोर देन वेलकम, बट कोर्ट ओवर द फोन भी ली जा सकती है, तो उसके लिए आप मुझे कॉल टेक्स्ट करें, वॉइस मैसेज करें, एनी थिंग कैन बी डन, एनी वेज कैन बी डन।
राजा बादशाह ऑल स्टेट के ऑफिस के इंचार्ज इन पिकरिंग के इलाके में, 6472903773। सर आपका बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा इंसान है, हकीकत में बहुत प्यारा इंसान है। टेलीफोन तो सारे ऐसे बंद करके जाते हैं, मेरे जैसे सर के बीच में बट्टा मार के जाते हैं। आइए साहब, एक मुलाकात का वक्त हुआ चाहता है और ये मुलाकात एक हमारा सेगमेंट जिसको मैं अशर अजीम के साहब के साथ शेयर किया करती होती हूँ। अशर अजीम साहब मेरे साथ होंगे इन एनी मिनट बाय द टाइम। भाई खवातीन को तो जेवरात बहुत अच्छे लगते हैं, चूड़ियाँ ले लो, कड़े ले लो, चेन्स ले लो, स्टोन ज्वेलरी, रूबी ज्वेलर्स का नाम याद रखना। शादी ब्याह है या आम कोई छोटा बर्थडे पार्टी आप या किसी को गिफ्ट देने के लिए, यू मस्ट विजिट रूबी ज्वेलर्स। गोल्ड का ट्रेड है या फिर रिपेयर है, रूबी ज्वेलर्स 7086 एयरपोर्ट रोड 9056776888। डीजी साहब अशर अजीम साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। अशर अजीम साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत से लोगों के आइडियल्स, बहुत से लोगों के आइडियल हैं। आपका धुआं ड्रामा, आपने सीएसएस का एग्जाम दिया, आप एयरफोर्स में थे, आप कस्टम्स में थे, एंड आई थिंक मैं कभी कभी, मेरे आने से तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, मगर वो जो मेरा बेहतरीन दिमाग थे पाकिस्तान के, जिसमें ये पढ़े लिखे लोग जो थे उनका पाकिस्तान का लॉस, और वो जो फाइन लोग जिन्होंने दे कुड हैव ब्रिंग सम चेंज इन पाकिस्तान। मगर एक छोटी सी बात आपको याद होगी, जो शरीफ एक आदमी आता है ना किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसे पुलिस का डिपार्टमेंट हो या एजुकेशन का डिपार्टमेंट, एनी डिपार्टमेंट, तो उसमें ये होता है कि मेरा मैंने एक बड़े सीनियर पर्सन से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि अगर आप जो कर रहे हैं आप अच्छा करते चले जाएं, मगर सारों की जिंदगी को महाल ना करें, बाज़ों का तो हम सिस्टम को चोक कर देते हैं। मेरा दिल करता है कि जनाब अशर अजीम साहब इसके बारे में रोशनी जरूर डालें इन द बिगिनिंग और टूवर्ड्स द एंड, या एक वो लोग होते हैं जो फिर इस सिस्टम के साथ चल नहीं सकते, वो फिर अल्टीमेटली अलग हो जाते हैं, या उनको फायर कर दिया जाता है, या उनको अर्ली रिटायरमेंट पे। पाकिस्तान में बेशुमार ऐसी चीजें हैं जिसमें पीपल वर फोर्स्ड फॉर द अर्ली रिटायरमेंट। ठीक, दिस इज व्हाट द मॉइश्चराइज, दिस इज नॉट पाकिस्तान, हिंदुस्तान में यही हो रहा है, अमेरिका में ये हो रहा है, एवरीवेयर। अशर अजीम साहब मेरे साथ हैं, बहुत खूबसूरत लिखते हैं, और मेरा ख्याल है लिखने के लिए एक हिसास कलम, हिसास दिमाग इनके साथ है। जनाब अशर अजीम साहब, अस्सलाम वालेकुम सर।
आरफा जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही
है? आवाज क्यों नहीं आ रही? आप ही प्रोग्राम जब भी मैं करती हूँ जो प्रोग्राम का पहला है। नहीं, इन्होंने दो हेडफोन रखे हुए, एक हेडफोन में से आपकी आवाज आती है, एक में से रेडियो की आवाज आती है।
वो मुझे भी कभी कभी अगर फोन पे आवाज ना आ रही हो तो मैं दूसरा काम ट्राई करता हूँ, फिर आती है।
बहुत अच्छा लगता है, बड़ी प्लेजेंट वे में हम चलते हैं आशिर अजीम साहब। सर आपको मतलब हम किसी कंट्री की बात नहीं करना चाहते, एंड आई थिंक इट्स इंटरनेशनली जिंदगी जिस तरफ चल रही है। आज की सर बहुत बड़ी रिपोर्ट है कि जमीन की जो लाइफ है दैट इज 1 अरब साल की लाइफ है, ये चाइना में रिसर्च हुई है कि सूरज जो है वो उसका हुजम बढ़ता जा रहा है, गर्मी जमीन पे होती जा रही है, और क्या सूरत हाल होगी। एवरीथिंग इज गोइंग टूवर्ड्स डिक्लाइन, एवरीथिंग इज गोइंग टूवर्ड्स डिक्लाइन। मुझे आप बताएंगे कि बाजू का ईमानदार होना नॉट बैड, मगर ईमानदार होते हुए ये नहीं होता कि आप सिस्टम को चोक कर दें, ए भी गलत है, एने भी नहीं काम करना, सारों को आप गलत करा दे देते हैं। इट्स बेटर कि आप अपने काम करते जाएं, ऑनेस्टली लेट द सिस्टम वर्क। इसके बारे में कोई थोड़ी सी बात कर सकते हैं?
यकीनन, असल में जो आपने बात की, हर बात की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो इसकी भी बहुत सारी लेयर्स हैं। एक तो इशू ये है, जब आप ईमानदार का लफ्ज यूज करती हैं तो फिर उससे जरा कॉनोटेशन और किस्म की निकलती हैं कि जी यू बिलीव यू आर डूइंग इट फॉर प्रॉबली द नेक्स्ट लाइफ, क्योंकि उसमें भी फिर रिवॉर्ड और रिटर्न का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जजा और सजा का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो उसमें यह है कि जी मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे फायदा होगा अगली दुनिया में, और सो और मैं नहीं करूंगा, अगर ये करूंगा तो मुझे नुकसान होगा, कुछ इस तरह का। सो उसमें कैरेक्टरिस्टिक का कोई इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। कुछ लोग मेरी तरह के होते हैं, वो घमंड बस जिद्दी होते हैं, वो कहते हैं कि यार देख ये जो है ना, मैं समझता हूं कि ये प्रिंसिपल ठीक नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। सो अब वो जो मसला है ना जी, ये हमें ना कोई रिटर्न की फिक्र होती है, ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान। तो जब फायदा नुकसान ना हो तो इट्स सिंपली अ मैटर ऑफ व्हाट यू स्टार्ट बिलीविंग इन। नाउ यस यू आर राइट कि जी आप अपनी एक्सटेंट तक जो कुछ कर सकते हैं आप वो करें, और पार्शली आप करते रहें, सिस्टम में बतदरीज इम्प्रूवमेंट आती रहे, लेकिन बहुत सी जगहों पे आप जाके फंस जाएंगे और आपको फिर आप नहीं कर सकेंगे क्योंकि सिस्टम आपको बिल्कुल आगे नहीं चलने देगा। मतलब अब सड़क है, आपने पाकिस्तान में पता नहीं आप कब लास्ट टाइम गई हैं, लेकिन जब मैं था तो अगर रेलवे फाटक क्यों बंद होता है तो यहां से जो गाड़ियां आ रही हैं तो दूसरी तरफ की गाड़ियां भी इसके सामने भी आकर खड़ी हो जाती हैं, वो दोनों तरफ से एक दूसरे को जाम कर देते हैं और हर तरफ से गाड़ियां खड़ी। अब इसका आप क्या इलाज करेंगे? तो थोड़ी देर में आपको कोफ्त होनी शुरू हो जाती है कि यार ये मतलब ये प्रिंसिपल क्या है यहां का, और इन सबको क्या नहीं पता कि इस तरह दोनों तरफ नहीं खड़े होते और ये एक दूसरे को खुद ही फंसा नहीं देते। मतलब अदरवाइज थोड़ा सा सबर कर लेते, एक दूसरे के पीछे लाइन में खड़े होते, जब फाटक खुलता तो दोनों गाड़ियां आराम से चली जाती, इस तरह सब फंस जाते हैं एक दूसरे के सामने। सो ये लैक ऑफ अकल है, ये लैक ऑफ डिसिप्लिन है, ये क्या है? सो वो जो कोफ्त होती है ना जी आपको, वो इतनी तंग करना शुरू कर देती है, और ये सिर्फ माशरे में नहीं है, डिपार्टमेंट्स में भी यही हो रहा होता है, घरों में भी यही हो रहा होता है, और हर जगह यही हो रहा है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता तंग आना शुरू हो जाते हैं, और फिर अगर आप जरा फायदा नुकसान ना देखने वाले हों तो आप कहते हैं यार मैं कहीं और जा रहा हूं, मैं कोई जंगल वंगल में निकल जाता हूं, लेकिन मेरा तुम लोगों के साथ गुजारा नहीं।
एलॉन मस्क ने तो चला गया ना, वो तो मरीख पे ढूंढ रहा है. और मैं ऑनेस्ट टू गॉड दिस इज नॉट अ जोक, मैंने भी आमिर को भेजा है. दिस इज अ न्यू स्टडी, अभी अभी रिलीज हुई है. हाउ लॉन्ग विल अर्थ एग्जिस्ट, इसकी हेडिंग है ह्यूमंस विल लाइकली डाई लॉन्ग बिफोर आवर प्लैनेट डज. और इसमें सूरज का हुजम बढ़ता चला जा रहा है और ये प्लैनेट्स को कैसे अपने बीच में मदगम कर लेगा, अपने बीच में जज्ब कर लेगा. ये बड़ी जबरदस्त रिसर्च है, ये आज की ये आउट हुई है. मैं बल्कि चाह रही थी कि आमिर अगर इसकी एक हेडलाइन दिखा दें. एलॉन मस्क ने, आपने ये कहा ना कि मैं चला जाऊं, अब दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप चला जाऊं, एक तो ये है कि एलॉन मस्क ने कोशिश किया कि मरीख, कहते हैं मरीख विल बी, ये देखिए साहब मैं आई एम नॉट मेकिंग इट, नीचे लेके आइएगा. Today the sun is essential source of the gravity and energy, but one day it will cause Earth's demise. As the solar system's central star ages, the life you are eventually consumed करेगी. सारे सितारों को खा जाएगा, सिर्फ मरीख बच जाएगा. तो इसीलिए एलॉन मस्क ने कहा है कि चल मैं तो मरीख को ढूंढता हूँ. ऑन द लाइटर मूड, आशिर अजीम साहब लाइटर मूड के ऊपर मुझे पता है कि, और आपको पता है मेंटल इलनेस को भी मुझे पता है कि आपने जरूर स्टडी किया होगा. ये बहुत सीरियस रहना भी, आपको याद है रीडर्स डाइजेस्ट में हुआ करता था लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. हम बाजों का जो कोई चीज हमें हासिल करनी होती है ना, इस वक्त भी पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मामले, हम सही गलत हर रास्ता इख्तियार करके उनको अचीव करना चाहते हैं. जब अचीव करते हैं हकीकत खुल के आती है तो फिर कहते हैं हाय हाय मैं क्यों कीता. तो जब आपकी शादी हुई थी तो आप भी मतलब यही कह देते पते थे बगैर जिंदगी नहीं. और आदमियों की आदत है, कहते हैं शादी उस बोर के लड्डू, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए. और फिर वो उनको लतीफे याद आ जाते हैं अपनी बीवियों से मुतल्लिक. तो आपकी क्या राय है इस बारे में, उसके बाद सीरियस टॉपिक की तरफ चलते हैं.
आई थिंक जी के असल में आवाज मेरी आ रही है और तस्वीर जो है ये चांद की आ रही है, समझ नहीं आ रही है.
आविल टुन है
तो
वो हैंग हो गया, सिस्टम हैंग हो गया जी. सिस्टम हैंग हो गया, सिस्टम.
अच्छा सिस्टम हैंग हो गया.
नहीं नहीं, मेरा ख्याल अभी विल पॉज, अगर आपको बुरा ना लगे सो वी कैन पॉज इट बिकॉज वी आई वांट. आप प्लीज एक सेकंड के लिए पॉज कीजिएगा, हमारा सिस्टम हैंग हुआ है. सो विल टेक सम कमर्शियल्स, कम बैक, स्टे ट्यून्ड प्लीज.
मछली अंडे दूध दही ते सस्ते चावल मिल दे, भले पकौड़िया ताजा मिठाइया गर्म समोसे मिल दे. बटाला सुपर मार्केट
स्पार पुरोधी वाहिद ऐसी मिसाली सुपर मार्केट, बटाला सुपर मार्केट 200 मार्कम रोड स्कारबोरो, मार्कम रोड से एग्लिंटन दा संगम, फोन 416-264-3111.
जी आशा अजीम, माई अपॉलोजीज, हमारा सिस्टम हैंग हो गया था बिकॉज वो जो सूरज था ना उसने हमारे सिस्टम को ही निगल लिया था. जी सर,
तो मैं गुजारिश ये कर रहा था जी, आपने सवाल पूछा था शादी के बारे में. मेरा ख्याल है कि जिंदगी में जो मैंने सबसे स्मार्टेस्ट काम किया वो शादी की, और मैं बहुत खुश हूँ. आई थिंक आई कुड हैव डन, आई थिंक आई हैव अ वंडरफुल कंपेनियन माई वाइफ.
कोई शक
हमारे इंटरेस्ट बहुत कॉमन है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. और मेरा ये ख्याल है कि अगर आपका जिंदगी में कंपेनियन ठीक ना हो तो आप जिंदगी में कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि जो भी घर में कुछ करने की कोशिश करता है दूसरा उसका रास्ता रोक देता है, तो वही ट्रैफिक एक दूसरे के सामने खड़ी रहती है.
बहुत खूबसूरत आपने बात कही, और मैं हमेशा इस बात को मेरी को ध्यान से सुनिएगा, ये जो मेंटल इलनेस है ना, जो एब्यूसिव फैमिली रिलेशन होता है ना, तो वो फिर एब्यूसिव फैमिली रिलेशन में बच्चा हर चीज को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, फिर वो अगली जनरेशन में वो चीज उसी तरह मुंतकिल होती है. सर आज हम कनाडा के इलेक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं. अब से कुछ अर्सा पहले चले जाते हैं तो कंजर्वेटिव्स पर ऑलमोस्ट डबल नंबर था उनका, आज की अगर हम बात करते हैं तो अगर आज इलेक्शन होते हैं तो लिबरल्स वाज़े अक्सरियत हासिल करेंगे, और अगर हम इनके पोल्स की बात करते हैं तो आज मेरा ख्याल है दे आर सिटिंग एट 47, लिबरल्स जो हैं 44 के ऊपर हैं, कंजर्वेटिव 37.8, हालांकि ये नंबर वो 47 पे चले गए हैं, ये 41 पे आ गए हैं। न्यू डेमोक्रेट्स जो हैं दे आर 8.7 के ऊपर हैं, ब्लॉक क्यूबैक 5.1, ग्रीन 2.4, पीपल पार्टी पहले चालू करने की लोड की पई सी, ये भी पाकिस्तान की जमात इस्लामी और जमात नहीं कहते मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी, और एक थी पीपल्स पार्टी एक पार्लियामेंटेरियन, ठीक है। तो ये पीपल्स पार्टी जो है 1.5 के ऊपर है, अदर्स 0.7 के ऊपर है। आज डग फोर्ड साहब का भी बयान आ गया है, मगर ये कनाडा की पॉलिटिक्स भी अमेरिकन रविश के ऊपर चल पड़ी है, मैं आपकी फीडबैक लेना चाह रही हूँ।
अर्फा जी, मेरी नाचीज राय ये है कि अब फर्ज करें बाहर बारिश हो तो फिर आप छतरी लेके बाहर निकलते हैं, तो आपकी जो लीडरशिप है आई थिंक इस वक्त का मौसम दुनिया में खराब है और ये कनाडा का बड़ा क्रूशल इलेक्शन है, और इससे पहले तो बिजनेस एज यूजुअल हुआ करती थी, एक ट्रेडिशनल बहुत अरसे से एक दरमियानी सी स्टेबिलिटी चल रही थी, हमारा एक बड़ा रिलायबल पार्टनर यूनाइटेड स्टेट्स था, हम वी वर जॉइंड एट द हिप एंड यू नो एंड लाइफ वाज गोइंग ऑन, सो देर आर डेज व्हेन वेदर इज फाइन एंड एवरीथिंग इज एज यूजुअल, एंड देन देर आर डेज व्हेन इट्स स्टॉर्म, सो देन यू हैव नीड डिफरेंट इक्विपमेंट। सो इसी तरह इस जिस तरह के हालात होते हैं आपको उस तरह की लीडरशिप भी चाहिए होती है, और इस वक्त मेरा ख्याल है कि ये कनाडा के बिजनेस एज यूजुअल के हालात नहीं है, और इसलिए हमें बहुत सोच समझ के इस दफा वोट देना चाहिए, और जिस तरह आप अपने अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं तो आई थिंक वी आर इन टर्बुलेंट वेदर एंड वी नीड टू रियली थिंक अबाउट इट व्हेन वी गो टू द पोल्स एंड डिसाइड, बिकॉज वील बी डिसाइडिंग अर फ्यूचर। मेरा ख्याल इलेक्शन के बारे में इस तरह है कि जैसे मेरी फिल्म थी मालिक, तो उसमें कॉन्सेप्ट यह था कि जी मैं पाकिस्तान का शहरी पाकिस्तान का मालिक हूं, तो कैनेडा का शहरी जो है वो कैनेडा का मालिक है, और हम जब हुक्मरान मेरे हुक्मरान इसके हुक्मरान मेरे मुकर्रर करदा और मुझे जवाब दे हैं, से मकसद यही है कि जी हमने अब वो हुक्मरान चूज करने हैं एज मालिक, जब आप वोट देने जाते हैं तो आप अपना फ्यूचर का हुक्मरान चूज कर रहे होते हैं, तो इट्स लाइक आपके सामने अब वोट आपने सीवीज मंगाई हैं लोगों की, और आप देख रहे हो कि मेरे पास इस पोस्ट के लिए जिसको मैं ठेकेदार रख रहा हूं मेरा मुल्क चलाने के लिए अगले 5 साल 4 साल, वो जो भी आएगा उन्होंने आपको अपनी सीवीज पेश की हैं, अब आपने एज मालिक वो इंटरव्यू ले रहे हैं कि जी इनमें से इस मौसम के मुताबिक जिस तरह के आपको हालात से आप कन्फ्रंट कर रहे हैं, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, उसके मुताबिक आपने चूज करना है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी बिकॉज फॉर योर ओन सेक आई थिंक यू मस्ट चूज वाइजली बिकॉज व्हाट यू चूज यू विल गेट, एंड आप अमरीका में देख लें, अमरीका में लोगों ने एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट किया, और जितने वोट किया जज्बाती होके किया या जो भी होके किया उनमें से बहुत से आप पछता भी रहे हैं, दुनिया बड़ी टर्बुलेंट हो गई, जो उन्होंने सोचा था कि हमें मिलेगा पता नहीं वो उन्हें मिला कि नहीं मिला। तो कनाडा में भी आई थिंक वोट करते हुए वी मस्ट वे ऑल एस्पेक्ट्स एंड मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सो आई थिंक कि वेदर क्या है इस वक्त और लोगों को क्या कैनेडियंस के जहन में प्रायोरिटीज हैं हमें वो देखनी पड़ेंगी। मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है, मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त लोगों को के जहन में आती हैं, क्योंकि मेरे जहन में आती हैं तो मेरा ख्याल है बाकी लोगों के भी वो है। पहला तो सवाल ये है कि जी क्या हम इन पर्टिकुलर हालात में क्या हम का वैसल स्टेट की तरह ही रहेंगे या हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनके चलेंगे। सो मेरा ख्याल है कि अवाम के जहन में ये बहुत बड़ी कंसिडरेशन है कि जो आपने अभी बताया कि जी इलेक्शन के नंबर्स अचानक चेंज हुए, लोग बहुत कंजर्वेटिव्स काफी आगे थे, और फिर जब ये यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रंप की गवर्नमेंट आई तो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू एकदम तब्दील होना शुरू हुआ। तो मेरी नाचीज राय में इस वक्त जो कैनेडियंस के जहन में एक बहुत बड़ी चीज है वो ये है कि जी क्या कैनेडा एक इंडिपेंडेंट लीग आगे चल सकता है, जबकि हमारा जो बिगेस्ट पार्टनर था जिसके साथ हम आज तक रिलाय करते रहे, जिसपे उसने हमें अचानक हमारे साथ ये होना शुरू हुआ, उसने हमें 51st स्टेट बनाने की कोशिश करने लगा। उसने हमें कहा कि जी मैं तुम्हारी इकोनॉमी की ये हालत कर दूंगा कि इन, इन, इन पे कब्जा करना आसान हो जाएगा। तो एक हम पर्टिकुलर तरह के हालात में जा रहे हैं और कनेडियंस ने ट्रैवल करना कम किया फलाना। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो कनेडियंस के जहन में जो एक टॉप वो है वो ये है कि जी यूएस से अब हमारा डायरेक्शन शायद थोड़ा सा तब्दील होगा और क्या हम एज कैनेडियंस एक कंप्लीट अपने फायदा, अपने इंडिपेंडेंट, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के मुताबिक एक कंट्री इंडिपेंडेंटली होकर चल सकते हैं या नहीं। सो दिस इज वन ऑफ द कंसिडरेशंस। दूसरी जो कैनेडियंस के जहन में बहुत ज्यादा है और मुझे नजर आती है वो हाउसिंग पे बड़ी डिबेट है। घरों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, इमिग्रेंट्स को बहुत ज्यादा ब्लेम किया जाता है, इसकी फिर फर्क फर्क ऑप्शंस हैं कि जी। तो आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी में कंजर्वेटिव हैं तो उसको भी ये बातें उनके भी जहन में है कि जी हाउसिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हर एक की पॉलिसीज फर्क फर्क हो सकती हैं, सॉल्यूशंस फर्क फर्क हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम वो मौसम डिफाइन कर रहे हैं कि जी वो चीजें इश्यूज हैं क्या जो इस इलेक्शन को इफेक्ट करेंगी और फ्यूचर में इन इलेक्शंस के उन पर इम्पैक्ट होंगे। सो हाउसिंग है, उसकी अफोर्डेबिलिटी है, उसके साथ असल में कोई भी चीज आइसोलेटेड नहीं होती। जब आप हाउसिंग का एक इशू है तो उस पर फिर लोग ये भी कहते हैं कि जी उसको कुछ लोग इमिग्रेशन के साथ जोड़ रहे हैं कि जी ये इमिग्रेंट्स ने हमारी जिंदगी तबाह कर दी, कि जी घरों की इसलिए कीमतें बढ़ गई हैं या जो भी है। सो इट टाइज इन टू दोज इशूज टू। तीसरा जो इशू जो लोगों के जहन में है हमेशा से वो हेल्थ केयर का इशू है कि क्या इसे हम प्राइवेटाइज करें। उसमें कंजर्वेटिव के एक व्यूज हैं और कुछ क्या नाम है जो लिबरल्स हैं उनके अपने व्यूज हैं, एनडीपी के अपने व्यूज हैं। सो उसकी एक बैलेंस्ड क्या वो होगी, क्या हेल्थ को बेसिकली प्रोविंसेस को दे दिया जाए जो आपके कंजर्वेटिव की बात कर रहे हैं। फिर आपकी क्लाइमेट पॉलिसी है, कार्बन टैक्स होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होगी। फिर टैक्सेशन और डेट कि जी हमें बैलेंस बजट लेके चलना है कनाडा को कि नहीं, कि हमें अपना बजट डिफिसिट को कंट्रोल करना है। उसमें अब लिबरल्स का एक व्यू है और कंजर्वेटिव्स का एक व्यू है। सो फिर सोशल पोलराइजेशन, आपने देखा है कि जी एक राइट की तरफ ड्रिफ्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो क्या हम इस वक्त कंजर्वेटिव जाहिर है उनका एक माइंडसेट है उस राइट की तरफ जाने की तरफ, उनका एक व्यू है, एक लिबरल्स का व्यू है वो शायद लेफ्ट की तरफ पुल कर रहे हैं, लेकिन ये व्यूज ये सारी फोर्सेस जो कैनेडा में एक सोशल पोलराइजेशन जो तमाम दुनिया में है उसमें जाहिर हम पे भी इम्पैक्ट होंगे और जो आप फैसला करेंगे वो आप पे आगे वो भी आएगा। फॉरेन इंटरफेरेंस के इश्यूज है। सो मैंने ये 6-7 चीजों की लिस्ट बनाई जो मेरे ख्याल में इस वक्त कैनेडियंस के जहन में है और ये इनसे कोई डिसएग्री नहीं करता, कोई पार्टी इनसे डिसएग्री नहीं करती, उनकी अपनी अपनी तरीकेकार है कि हम इसे कैसे लेकर चलेंगे। अब ये जितने इश्यूज हैं डिपेंडिंग ऑन हु यू चूज योर नेक्स्ट सीईओ आपने किसको रखना है तो वो इसको लेकर आगे चलेगा। अच्छा, अब जब मैं इस पे सोच रहा था तो मेरा तो टिपिकल वही तरीका है कि मेरे सामने सीवीज पड़ी हैं लोगों की और मैं उनको देखूंगा और जो मैं समझूंगा कि इस इन हालात में इस मुल्क को सबसे बेहतर कौन चला सकता है मैं उसके साथ जाऊंगा। तो जो तीन बड़ी पार्टीज टॉप पे आई जिनके चांसेस बनते हैं तो मैंने उनकी एजुकेशन वाली पहले दिखाइएगा किसी एजुकेशन, तो मैंने इन तीनों को सामने रखा। तो अगर मैंने इनको सामने रखा तो अब आप इसमें देखें कि एक कंजर्वेटिव के हैं ओलिविया साहब हैं, माकानी साहब हैं लिबरल्स के और एनडीपी के वो। तो अगर इन तीनों की मैं सीरीज उठा के सामने रखता हूं बिल्कुल सिंपल जो हमारे पास टाइम है, तो अगर आप इनकी एजुकेशन देखती हैं क्योंकि सर जो हमारा लीडर है वो आप एक पूरे बैकग्राउंड के साथ आ रहे होते हैं, आपका वर्ल्ड एक्सपोजर क्या है उसके साथ आ रहे होते हैं, आपकी ट्रेंड क्या है, आपने किया क्या है, तो आप मुल्क को उसी तरह लेके आगे चलेंगे। तो ये अब आपके सामने है, दो के पास बैचलर्स डिग्री है, एक लॉ की डिग्री है, एक साहब माकानी मुझे इसमें क्लियरली मेरा ख्याल आप खुद भी देख के अपना फैसला खुद कर सकते हैं, मुझे तो ऑब्वियसली इसमें सीधा सीधा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जी कौन तालीम याफ्ता और कितना एक्सपोजर और किन यूनिवर्सिटी से पढ़ा, इसका यकीनन दुनिया के प्लेटफॉर्म पे आपका लीडर आपको रिप्रेजेंट जो करने जा रहा होता है वो क्या आपने क्या लेके आ रहा है, क्या काबिलियत है। एजुकेशन इज अ बिग थिंग विच टेक्स यू दैट वे। फिर अब इनका तजर्बा क्या है, आप आगे देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे, तो इनका वर्क एक्सपीरियंस के जी ओके पढ़ तो लिया, चार किताबें पढ़ ली, तो उसके बाद अब नेक्स्ट ये क्या और क्या कर सकते हैं, तो इनका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, तो वो अब आप देखिए आपके सामने आप लोग खुद पढ़ लें। सो एक साहब जो हैं पोलिवियर साहब जो हैं ये वो थे क्या नाम
है
he was a staffer. Let me actually get my bigger slide because your screen is yeah. So he was a staffer and then next he became
a businessman.
Please, yeah. And let me get my slide. Yeah. So he was a political staffer. He was also a podcaster, a journalist. Then he is a real estate king ki ek firm hai. और फिर ये एमपी थे, पॉलिटिशियन हैं बेसिकली विद अ रियल एस्टेट, बेसिकली पॉलिटिशियन है और थोड़ा सा रियल एस्टेट पे काम करते हैं। कानी साहब गवर्नर रहे बैंक ऑफ कनाडा के, ही वाज़ द सेकंड यंगेस्ट ब्यूरोक्रेट इफ